आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम बजट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप बताया, कहा समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है यह बजट। आम बजट में प्रदेश में रेलवे के लिए 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का हुआ आवंटन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी से कनेक्टिविटी को मिलेगी रफ्तार। लखनऊ में आज आयोजित हो रहा है फार्मा कॉन्क्लेव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा भी होंगे शामिल। और मुख्यमंत्री ने प्रगतिशील किसानों को बीज उत्पादन कार्यक्रम से जोड़कर स्थानीय स्तर पर गुणवत्ता युक्त बीज की उपलब्धता बढ़ाने पर दिया जोर। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट को लेकर कल अपने सरकारी आवास पर मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आम बजट 2026-27 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप समाज के हर वर्ग, युवा, महिला, किसान और उद्यमी को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
बजट में किसान, युवा, महिला और गरीब, इन सभी पक्षों को, इन सबकी आकांक्षाओं को ध्यान में रख करके यह बजट प्रस्तुत हुआ है। स्वाभाविक रूप से इस बजट के माध्यम से देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य की आकांक्षाओं की पूर्ति भी होती है, उसके लिए नई संभावनाओं के द्वार खुले हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में एमएसएमई सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। देश में सबसे अधिक एमएसएमई यूनिट उत्तर प्रदेश में है, जिनके माध्यम से लगभग 3 करोड़ लोग आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं।
10,000 करोड़ रुपए का एमएसएमई सेक्टर के लिए बजट का प्रावधान, 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के पास है। 3 करोड़ जो हमारी आबादी है, इस एमएसएमई के माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर होती है। ये 10,000 करोड़ रुपए का जो एक फंड है, हमें एमएसएमई सेक्टर में, जिसको हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में प्रमोट किया है, जिसको हमने ब्रांडिंग की है, डिजाइनिंग के साथ, पैकेजिंग के साथ, एक्सपोर्ट के साथ जोड़ने का कार्य किया है, इसको नई तकनीक के साथ जोड़ने के लिए, एक्सपोर्ट के साथ जोड़ने के लिए, पैकेजिंग की नई संभावनाओं को आगे बढ़ाने में यह यूपी जैसे राज्य को मदद करेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में लॉजिस्टिक्स के लिए भी बड़ी संभावनाएं हैं। देश का पहला अंतरदेशीय जलमार्ग वाराणसी से हल्दिया के बीच प्रारंभ हो चुका है, जिससे वाराणसी को मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया को नई गति मिलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में राज्यवार बजट आवंटन को लेकर मीडिया को संबोधित किया। रेल मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश में रेलवे के लिए 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश को 2 नई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी मिले हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने से दिल्ली से वाराणसी और आगे पूर्वी भारत तक की रेल यात्रा सुरक्षित तथा सुविधाजनक हो जाएगी।
उत्तर प्रदेश के लिए एक बार फिर रिकॉर्ड बजट एलोकेशन हुआ है रेलवे का 20,012 करोड़। और उत्तर प्रदेश में जो हमने प्रॉमिस किया था कि 1,00,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट होंगे, तो वो करीब करीब पहुंचते अब 92,000 करोड़ रुपीस के टोटल प्रोजेक्ट्स हो गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के लिए 2 नए बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का सैंक्शन किया है। पहला है दिल्ली से वाराणसी, दूसरा वाराणसी से सिलीगुड़ी। इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत तेजी से हुआ है, उत्तर प्रदेश 100% इलेक्ट्रीफाई हो चुका है और अमृत भारत स्टेशन के तहत 157 स्टेशन का नवनिर्माण हो रहा है और कई रिसेंटली अमृत भारत ट्रेन चालू हुई है।
केंद्र सरकार ने बायो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए बजट में बायो फार्मा शक्ति योजना का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए 5 वर्ष में 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इस पहल का उद्देश्य जैविक और जैव समान दवाओं के उत्पादन के लिए भारत के इकोसिस्टम को मजबूत करना है।
सरकार ने 3 नए राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों की स्थापना और 7 मौजूदा संस्थान के उन्नयन के माध्यम से जैव औषधीय क्षेत्र पर केंद्रित नेटवर्क के विस्तार का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य जैव औषधीय अनुसंधान, विकास, विनिर्माण और विनियमन में उच्च विशिष्ट मानव संसाधनों की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करना है। इसके अलावा देश भर में 1000 से अधिक मान्यता प्राप्त नैदानिक परीक्षण स्थलों के विकास के प्रस्ताव के साथ एक व्यापक नैदानिक अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण शामिल है। सरकार ने केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDA की क्षमता बढ़ाने सहित जैविक दवाओं के लिए नियामक ढांचे को मजबूत करने की भी घोषणा की है। बजट में किए गए प्रयासों से भारत को वैश्विक जैव फार्मा बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए अधिक मजबूत आधार मिलेगा, साथ ही घरेलू स्तर पर उन्नत और किफायती जैविक चिकित्साओं तक पहुंच में सुधार होगा। भानु प्रताप सिंह के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने केंद्रीय बजट 2026-27 को समावेशी विकास और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने वाला बताया। एक रिपोर्ट।
बजट में सौर ऊर्जा से संबंधित प्रावधानों के संबंध में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कहा कि सोलर ग्लास के मुख्य घटक सोडियम एंटीमोनाइट को कस्टम ड्यूटी से छूट दिए जाने से PM सूर्य घर योजना के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा म्युनिसिपल बॉन्ड को बढ़ावा देने के प्रावधानों से शहरी निकाय आत्मनिर्भर बनेंगे। श्री शर्मा ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026 में उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास को विशेष महत्व दिया गया है। समाचार कक्ष से अरुण।
केंद्रीय बजट 2026-27 में वाराणसी के सारनाथ को 15 आर्कियोलॉजिकल साइट्स में शामिल करके वाराणसी क्षेत्र के सांस्कृतिक और पर्यटन महत्व पर जोर दिया गया है। पर्यटन मंत्रालय के सहायक निदेशक पावन प्रसून ने बताया कि सारनाथ को कल्चरल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने और यहां प्रशिक्षित गाइड की सहायता से पर्यटकों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी।
सारनाथ को एक क्लासिक एक्सपेरिमेंटेशियल सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए बजट में प्रावधान है। सारनाथ एक जगह है जहां पर कि पूरे विश्व के न केवल बौद्धिक क्षेत्र के लोग, बुद्ध क्षेत्र के लोग, लेकिन सब लोगों के लिए एक काफी पवित्र स्थल है। अगर इसकी महिमा को हम एक बड़े ही सरल, सुगम और सहज तरीके से उनके सामने प्रस्तुत करेंगे, आने वालों की संख्या में कितनी वृद्धि होगी।
इन्वेस्ट यूपी और उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में आज लखनऊ में फार्मा कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य प्रदेश को देश के अग्रणी फार्मास्यूटिकल एवं मेडिकल डिवाइस निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा भी शामिल होंगे। कॉन्क्लेव में फार्मा क्षेत्र की कई प्रसिद्ध कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रगतिशील किसानों को बीज उत्पादन कार्यक्रम से जोड़कर स्थानीय स्तर पर गुणवत्ता युक्त बीज की उपलब्धता बढ़ाने पर जोर दिया है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री ने बीज नीति पर चर्चा करते हुए अगले 5 वर्षों के लिए प्रदेश की बीज उत्पादन क्षमता, गुणवत्ता और उपलब्धता को नए स्तर तक ले जाने के लिए ठोस रोडमैप तैयार करने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीज उत्पादन, प्रसंस्करण और भंडारण की पूरी प्रक्रिया में आधुनिक तकनीक का अधिकतम उपयोग आवश्यक है ताकि प्रमाणित बीज की कमी न हो और किसान सशक्त बन सके। फसल विविधीकरण को गति देने के लिए मुख्यमंत्री ने दलहन, तिलहन, मक्का, बाजरा, ज्वार और बागवानी फसलों के उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता के लिए विशेष रणनीति तैयार करने को कहा। इसी क्रम में उन्होंने प्रदेश में अगले 5 वर्षों में कम से कम 5 सीड पार्क स्थापित करने की दिशा में तेजी से काम करने के भी निर्देश दिए। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
मौसम विभाग ने प्रदेश में आज कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और वर्षा की संभावना व्यक्त की है। विभाग के मुताबिक कल से मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम बजट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप बताया। कहा, समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है यह बजट। आम बजट में प्रदेश में रेलवे के लिए 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का हुआ आवंटन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी से कनेक्टिविटी को मिलेगी रफ्तार। लखनऊ में आज आयोजित हो रहा है फार्मा कॉन्क्लेव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा भी होंगे शामिल। और मुख्यमंत्री ने प्रगतिशील किसानों को बीज उत्पादन कार्यक्रम से जोड़कर स्थानीय स्तर पर गुणवत्ता युक्त बीज की उपलब्धता बढ़ाने पर दिया जोर। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।